हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 6 टेक्स्ट नंबर 25। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, शनै शनैरु परमे बुद्ध्याधृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चित् अपि चिन्तयेत्। शनै शनैरु परमेत् बुद्ध्याधृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चित् अपि चिन्तयेत्। शनै शनैरु परमेत् बुद्ध्याधृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चित् अपि चिन्तयेत्। शनै शनैरु परमेत् बुद्ध्याधृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चित् अपि चिन्तयेत्। शनै शनैरु परमेत् बुद्ध्याधृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चित् अपि चिन्तयेत्। शनै शनैरु परमेत् बुद्ध्याधृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चित् अपि चिन्तयेत्। शनै शनैरु परमेत् बुद्ध्याधृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चित् अपि चिन्तयेत्। शनै शनैरु परमेत् बुद्ध्याधृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चित् अपि चिन्तयेत्। शनै शनैरु परमेत् बुद्ध्याधृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चित् अपि चिन्तयेत्। शब्दों का अर्थ, शनै अर्थात धीरे धीरे, शनै अर्थात एक एक करके क्रम से, उपरमेत निवृत्त रहे, बुद्ध्या बुद्धि से, धृति गृहीतया अर्थात विश्वास पूर्वक, आत्मसंस्थम समाधि में स्थित, मनः मन कृत्वा करके, न किंचित अपि चिंतयेत, ना मना कभी नहीं, किंचित अन्य कुछ भी, अपि भी चिंतयेत सोचे। अनुवाद, धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि समुचित विश्वास तथा बुद्धि के साथ मनुष्य को धीरे धीरे इंद्रिय कर्म करने बंद कर देना चाहिए। यह प्रत्याहार कहलाता है। मन को विश्वास, ध्यान तथा इंद्रिय निवृत्ति द्वारा वश में करते हुए समाधि में स्थिर रहना करना चाहिए। उस समय देहात्म बुद्धि में अनुरक्त होने की कोई संभावना नहीं रह जाती। दूसरे शब्दों में, जब तक इस शरीर का अस्तित्व है तब तक मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है, किंतु उसे इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से यह अवस्था सहज ही प्राप्त की जा सकती है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करते हैं, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपरान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहकर्णरघुनाथ वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहकर्णललिता श्रीविशाखन्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपीका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनं गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुति देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंचाकल्पतरुभयश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। अत्यंत सुंदर भगवान आज हमें ये बता रहे हैं कि हम आध्यात्मिक की राह पर उन्नति कैसे कर सकते हैं, कि हमें अगर स्पिरिचुअल लाइफ में सक्सेस करना है तो सक्सेस के लिए क्या चीज रिक्वायर्ड है, क्या चीज हमें चाहिए। तो भगवान आज हमें बता रहे हैं शनै शनै रूप रमै बुद्ध्या धृति गृहीतया, कि आप क्रम से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर में निवृत्त रहोगे और कि कैसे धृति गृहीतया, यदि आप विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाओगे। अगर तो आगे बढ़ने के लिए क्या नीड किस चीज की है, कि सबसे पहले क्या है कि हमें अपने गोल के ऊपर जो हमारा गोल है लक्ष्य है उसके ऊपर अपनी दृष्टि जमाए रखनी है कि आगे वो मेरा गोल है। वहां से भगवान कहते हैं आत्म संस्थम मन कृत्वा न किंचित अभिचिंतित, कि आपको आत्मा में स्थित रहना चाहिए। कभी भी ये याद ये कंटिन्यूस याद रखना है कि आप आत्मा हो। आत्मा आत्म संस्थम मन कृत्वा, मन को ये याद करा दो कि तुम ये मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। किंचित अपि न चिंतयेत, उसके अतिरिक्त और कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप कितना फास्ट चल रहे हो ये रिक्वायरमेंट नहीं है, कितना आप लक्ष्य को फोकस कर रहे हो ये रिक्वायरमेंट है, कि माइंड शुड बी कंप्लीटली फोकस ऑन योर गोल कि कृष्ण प्राप्ति मेरे जीवन का लक्ष्य है और उस लक्ष्य के लिए आपको अपने उस माइंड को जो है टोटली ईगरनेस के साथ, बहुत ही उत्साह के साथ, विश्वास के साथ उस पथ पर आगे चलते रहना है और पूरा कंप्लीटली इंटेंसिटी के साथ, दैट इंटेंसिटी इज रिक्वायर्ड कि आपको अगर आध्यात्मिकता में उन्नति करनी है तो ये है कि आप बस आपके जीवन का जो लक्ष्य है उसको याद रखना है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, किंचित अपि न चिंतित, इसके अतिरिक्त और कुछ सोचना नहीं है कि लक्ष्य मेरा ये है, बाकी इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो बाधाएं आ रही हैं उनको तो धीरे धीरे आपको पार करना, चलना तो जरूरी है। ऐसा नहीं है लक्ष्य याद हो और वहीं वहीं खड़े हुए तो लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चलते जाना है। रास्ते में जो भी रुकावटें आ रही हैं, जो भी बाधाएं आ रही हैं, उन बाधाओं के अंदर चिपकना नहीं है। जैसे इस संसार में भी भौतिक वस्तुओं, भौतिक किसी फील्ड में भी यदि हमको उन्नति चाहिए होती है तो फिर हमको अपना डिटरमाइन खुद को करना होता है, लक्ष्य के ऊपर नजर जमा के रखना है। जैसे बच्चों की जब एग्जाम्स होते हैं तो उस समय क्या सोचते हैं बच्चे कि नहीं भाई मेरे एग्जाम्स हो रहे हैं, टीवी कंप्यूटर सब बंद, मोबाइल पे गेम नहीं खेलेंगे, क्योंकि ये सब क्या है, बाधा बनेंगी, मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, अच्छे रैंक से पास होना है, तो फिर ये सब बाधाओं की और यदि मैं न किंचित अपि चिंतित, यानी उसके अतिरिक्त और कुछ सोचना नहीं है। तो वास्तव में भक्तों, ये मनुष्य जन्म हमारे एग्जाम है, इस मनुष्य जन्म में अगर फेल हो गए तो दोबारा से 84 लाख की योनियों में हो सकता है हमें भटकना पड़े। तो फिर इस ये मनुष्य जन्म में हमें अपने गोल को समझना है कि किस गोल के लिए मुझे ये मनुष्य जन्म, किस गोल को प्राप्त करने के लिए मिला है। तो बाकी जितनी बाधाएं हैं उनकी ओर कोई भी आकर्षण नहीं उत्पन्न करना है। वास्तव में भक्तों, भौतिक गोल जब प्राप्त करने के लिए हम उसको लक्ष्य बनाते हैं तो उसके लिए, उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत केवल हमारी तरफ से होती है, वो गोल कभी भी हमारी ओर खींच कर नहीं आता है ना, हमें खुद से जाना होता है। लेकिन ये कृष्ण भक्ति इतना सुंदर ये लक्ष्य है कि जितना हम आगे बढ़ते हैं उतना ही कृष्ण हमारी ओर भी आगे बढ़ते हैं। आप किसी भी भाव से, भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजामि हम, तुम किसी भी भाव से मेरा चिंतन करो, मैं भी उसी भाव से तुम्हें तुम्हारा चिंतन करूंगा। आप चाहे इवन यहाँ तक कि अगर भगवान का चिंतन हम शत्रु भाव से भी करते हैं, कोई जैसे कंस है, उसने भगवान का चिंतन शत्रु भाव से किया। आप सबको याद होगा शिशुपाल के विषय में, शिशुपाल के लिए भागवतम में आता है कि जब छोटा बच्चा होता है ना, बिल्कुल छोटा सा होता है जिसे बोलना नहीं आता है, तो वो तोतली भाषा में बोलता है और उसकी भाषा किसी को समझ में नहीं आती है, सिर्फ माता ही एक ऐसी होती है जो उसकी भाषा से समझ पाती है कि वो क्या बोल रहा है। तो जब इतना छोटा सा था ना, जब उसे सही तरह से बोलना भी नहीं आता था, तब भी जब वो बोलता था तो वो भगवान के विषय में दुर्शब्द बोलता था, अपशब्द बोलता था, बस उसको आता था कृष्ण के विषय में अपशब्द बोलना। उसको, उसका गोल था मैं कैसे कृष्ण के विषय में और भी ज्यादा अपशब्द बोलू। तो जब उसकी माता ने, इतना छोटा सा था और उसकी माता ने जब सुना तो फिर वो डर गई, क्योंकि अब उसने देखा कि अगर द्वारिकाधीश के विषय में ये इस तरह से बोलता रहेगा तो जाहिर सी बात है भगवान इसको मार डालेंगे, है ना, कोई इतना ज्यादा अपमान अपना कैसे बर्दाश्त करेगा, और वो तो त्रिलोकी के नाथ। तो फिर है ना, शिशुपाल की माता ने कृष्ण से कहा, कृष्ण तुमसे एक मेरी प्रार्थना है कि तुम मेरे पुत्र का वध मत करना। तो कृष्ण ने कहा, बुआ, क्योंकि वो कृष्ण की बुआ थी, बोला बुआ ठीक है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं इसका वध नहीं करूंगा, अगर जब तक इसने मेरे विषय में 100 शब्द अपशब्द ना कहे हो, 100 अपशब्द कहने के बाद मैं एक भी नहीं सुनूंगा, 100 कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर मैं इसको, इसका वध कर दूंगा। तो फिर ना, अब शिशुपाल को ये पता चल गया था कि है ना, भगवान तब तक मेरा वध नहीं करेंगे जब तक कि मैं 100 अपशब्द नहीं बोलूंगा। तो भगवान क्या, वो शिशुपाल क्या करते थे, जहां भी कृष्ण को मिलते थे उनका अपमान शुरू कर देते थे। तो लेकिन उनको पता था कि मेरा बैलेंस कितना है, मुझे कितनी देर तक बात करनी है, जब तक 100 अपराध कर लूं। 100 अपराध करने के बाद मुझे ज्यादा नहीं बोलना। तो अभी जैसे हम मोबाइल पे बात करते हैं तो हमें पता होता है ना कि हमारे पास इतना बैलेंस है, मैं इतने बैलेंस की बात कर सकता हूँ। फिर वो क्या करता था, इतना बोलता था, हमेशा कृष्ण सुनते थे, लेकिन 100 खत्म होने से पहले ही वो चुप कर लेता था और वहां से चला जाता था, क्योंकि अब उसको पता था 100 कर लूंगा उसके बाद तो कृष्ण छोड़ेगा नहीं। लेकिन ऐसे करते, हमेशा ऐसे ही करता था, लेकिन ऐसे करते करते एक बार जब राजसूय यज्ञ हुआ और वहां पर कृष्ण को अग्र पूजा के लिए बोला गया कि भाई कृष्ण की अग्र पूजा होगी, शिशुपाल से कैसे बर्दाश्त होगा, शिशुपाल तो कृष्ण का जन्म से वेरी था, तो वो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि कृष्ण की अग्र पूजा हो। तो फिर उसने बोला कि फिर कृष्ण के विषय में अपशब्द बोलना शुरू कर दिए। लेकिन अब कभी कभी ऐसा होता है जब हम बहुत ज्यादा ईगरनेस के साथ, बहुत ज्यादा एंथुजियम के साथ और इंटेंसिटी के साथ किसी से बात करते हैं ना, तो हमें याद नहीं रहता कि हमारा कितना मोबाइल का बैलेंस बाकी बचा है ना। फिर तो हम पूरा वो बात करते रहते हैं और जब पता चलता है, जब है ना मोबाइल में कंप्यूटर की वॉइस आती है कि आपका बैलेंस समाप्त हो गया है ना, अब आप मजीद बात नहीं कर सकते। तो इस तरह से उस समय, क्योंकि उसको इतना हृदय से हो रहा था मैं किस तरह से कृष्ण को नीचा दिखाऊं और उसकी अग्र पूजा ना होने दूं, तो बोलता गया 100 अपराध हो गए, 100 से भी ज्यादा हो गए। और भगवान ने बोला बस करो शिशुपाल, अगर और एक भी शब्द कहा तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। तो कृष्ण को कहने लगा और भी बुरी अपशब्द बोलता गया और बोला 101, 102, 103 ऐसे करा। और ये कह रहा था कि ऐसे करते करते कृष्ण के हाथ से सुदर्शन चक्र निकला और फिर शिशुपाल की गर्दन धड़ से अलग हो गई। लेकिन भक्तों, यहाँ तक कहानी समाप्त नहीं हुई। शिशुपाल इंटेंसिटी के साथ, ईगरनेस के साथ भगवान के साथ अपनी शत्रुता निभा रहा था, कभी नहीं चुका, किंचित अपि न चिंतयेत, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं सोच रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि शिशुपाल के शरीर में से एक तेज पुंज निकला और भगवान के शरीर में, सबने देखा कि वो भगवान के अंदर समाहित हो गया, सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो गई उसे। अर्थात भगवान तो अपने शत्रु भी यदि भगवान के साथ इंटेंसिटी के साथ, ईगरनेस के साथ, पूरा फोकस करके उसके साथ शत्रुता करते हैं, तो भगवान उसका हाथ नहीं छोड़ते, चाहे वो कंस हो या रावण, चाहे वो पोतना भी हो, कुछ वो जहर पिलाने के लिए भी आती लेती, लेकिन यदि फोकस किया हुआ है, कृष्ण को लक्ष्य बनाया हुआ है तो अवश्य कृष्ण उसे स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वचन दिया है उन्होंने, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। तो परंतु हमारे जीवन का लक्ष्य कृष्ण के साथ शत्रुता प्राप्त करना नहीं, बल्कि लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। तो कैसे प्राप्त करें, क्या करें ऐसा जिससे कि हम भगवान के प्रेम को प्राप्त करें। देयर आर वेरियस वेज टू शो इंटेंसिटी के अब कैसे उसको दिखाएं, एंड द इजीएस्ट वे इज चेंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे आसान कलि संतर उपनिषद में ब्रह्मा जी बताते हैं नारद को कि नारद, इस कलयुग में अगर कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करने का कोई सरल और सहज उपाय है तो वो क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम् नाम्नाम् कलिकल्मषनाशनम् नातः परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यति। और यहाँ तक बता दिया कि सारे वेदों में इसके अतिरिक्त और कोई उपाय है ही नहीं। तो भक्तों, यदि हम इसी महामंत्र को मजबूती के साथ पकड़ेंगे और कंटिन्यूअस इसको इंटेंसिटी के साथ, ईगरनेस के साथ और फोकस करते हुए एक एक कंप्लीट संख्या, एक फिक्स संख्या के साथ, भाई ये नंबर की इतनी माला मुझे डेली ही करनी है। जैसे एक माला में 108 मोती होते हैं और 108 मोती को एटलीस्ट मुझे डेली 4 बार करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उस समय तक ना खाऊं, ना सोऊंगी और ना ही मैं रात को विश्राम करूंगी, ना प्रसाद लूंगी। कोई भी हम कर सकते हैं, भाई ये माला मुझे इतनी एनी हाउ करनी ही करनी है। आजकल हम देखते हैं कि आध्यात्मिकता में उन्नति नहीं हो रही है ना। भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोग बहुत उन्नति कर रहे हैं, भौतिक में बहुत ज्यादा प्रगति हो रही है, बट आध्यात्मिक में बिल्कुल उन्नति नहीं है। उसकी वजह क्या है? इंटेंसिटी की कमी है ना, कि लोग उसमें उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। बाकी भौतिक वस्तुओं को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस, कोई जो डिवोटी होते हैं इवन दीक्षा लेते हैं वो भी कभी 10 माला करते हैं तो कभी 8 माला करते हैं, कभी करते नहीं है। ऐसा अगर चलता रहेगा तो फिर क्या होगा कि हम बोर हो जाएंगे ना, क्योंकि उसमें अब क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हृदय को अभी तक फोकस नहीं किया है, लक्ष्य को अभी तक पकड़ा नहीं है टाइटली कि नहीं ये मेरा लक्ष्य है और मुझे इसको करना है। डॉक्टर बनने के लिए लोग कितना पढ़ते हैं कि ऐसे ना कि रात को सिर्फ 2 घंटे सोते हैं, आराम करते हैं और कंटिन्यूअस वो है ना एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं और स्टडीज कर रहे होते हैं, जा रहे होते हैं इधर उधर पढ़ने के लिए, सीख रहे होते हैं। रात को आराम नहीं करते तो फिर मतलब रेस्ट नहीं करते हैं और खाना पीना सब कम कर रहे, स्टडी स्टडी स्टडी, कितना अपने आप को फोकस किया हुआ है। लेकिन भक्ति में क्योंकि फोकस नहीं होता है, माइंड जो है फिक्स नहीं करते हैं गोल के ऊपर, इससे क्या होता है कि उसमें ऐसा लग रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कुछ नथिंग एनीथिंग इज हैपनिंग, कुछ हो नहीं रहा है, उन्नति हो रही नहीं है तो बोरिंग लगता है। लेकिन जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना ही तो उन्नति होगी। अब यहाँ पर आपको पता है सामने मेरा गोल है और इतने स्टेप्स मुझे चलने, एक ही जगह पर खड़े हुए आप कैसे अपने गोल को पहुंचे, कैसे उन्नति होगी, कैसे आगे बढ़ोगे। हमें श्री प्रभुपाद जी ने रोजाना 16 जपा करने के लिए कहा, लेकिन अगर नहीं कर सकते हो कोई भी जबरदस्ती नहीं, आप कितना कर सकते हो, एक फोकस करो, एक नंबर को फिक्स करो कि मुझे एनी हाउ ये करना है, भले कुछ भी हो जाए मुझे ये करना है करना है। जिस तरह से दूसरे सारे काम दिन के हो जाते हैं, सुबह उठते हैं, रोजाना नाश्ता खाते हैं, रोजाना ब्रेकफास्ट खाते हैं, लंच खाते हैं, डिनर खाते हैं, और रोजाना दूसरे घर की सफाई करते हैं, घर में नहाते हैं और जो भी दूसरे दूसरे काम होते हैं, इवन कभी गेस्ट आ जाते हैं उनको भी जैसे कपड़े भी धोते हैं, पापड़ भी करते, जो जो करना होता है वो कितने सारे हार्ड काम होते हैं जो हमें पता है कि हमें करने हैं वो कर लेते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर रह जाता है तो कुछ क्या रह जाता है, माला रह जाती है। आज समय नहीं मिला, शादी होगी ना किसी के घर में तो भी बाकी सारे काम हो जाएंगे कि भाई शादी है तो भी खाना नहीं खाएंगे क्या, सोएंगे नहीं क्या, नहाएंगे नहीं क्या, बाकी रेस्ट नहीं करेंगे, बाकी दूसरा कोई कार्य नहीं करेंगे, सब करेंगे। एक माला को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है। अब माला इम्पोर्टेंट नहीं है, माला को इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है तो आपकी भक्ति में कभी उन्नति नहीं होगी। तो डिटर्मिनेशन के साथ, उत्साह के साथ भगवान को ये दिखाना है। वास्तव में भक्तों, हम अपने गोल को अपने प्रयासों से नहीं प्राप्त कर सकते। कृष्ण प्रेम प्राप्त करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन जब भगवान हमारे प्रयासों से प्रसन्न होते हैं तो हमारे प्रेम से बंध जाते हैं। जैसे यशोदा माई ने प्रयास किया, छोटा सा कृष्ण था उसको बांधने के लिए, हालांकि कितनी छोटी रस्सी भी काफी होनी चाहिए, उसको सोचना चाहिए कि इतनी सारी रस्सियां भी नहीं बंध पा रही हैं, मतलब ये नहीं बंधा जाएगा, ये कोई साधारण नहीं है। लेकिन उसने ये डिटरमाइन किया हुआ था, गोल था उसका क्या, इसको बांध के ही छोड़ना, आज मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ूंगी, बांधूंगी। पूरे शहर की रस्सियां उसने लगा दी और फिर जब भगवान ने देखा कि कितना ये शिद्दत के साथ प्रयास कर रहा है तो फिर भगवान बन गए। तो अगर हम भी इतना ही शिद्दत के साथ, इतना ही इंटेंसिटी के साथ, प्रेम के साथ भगवान के पवित्र नाम का जप करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि सुबह प्रभात साधना अवश्य करें, कुछ भी हो जाए, जैसे अगर स्कूल जाना होता है ना बच्चे को, तो भले रात को अगर शादी से 2 बजे भी आएंगे कहीं से प्रोग्राम से, तो भी पता है भाई स्कूल है तो उसको जाना है, लेकिन मैंने अगर सुबह माला नहीं की तो चलेगा? ऐसा क्यों, भक्ति में क्यों अपने आप को ढीला छोड़ देते हैं? जैसे यही एक फिजूल काम है दुनिया में, जो फिजूल है कि टाइम मिला तो किया, नहीं मिला तो नहीं किया। वास्तव में भक्तों, जितना भी पढ़ोगे, जितना भी लिखोगे, जितना भी कमाओगे, वो सब यहीं पर छोड़ के जाओगे, साथ जाएगी तो वही साधना जाएगी जो हम कर रहे हैं। यदि साधना में हम सीरियस नहीं है तो फिर समझो हम अपने आप से सीरियस नहीं है। शास्त्र तो यहाँ तक कहता है कि जो व्यक्ति मनुष्य जीवन पाकर भक्ति में सीरियस नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं कर रहा, वो कसाई से भी ज्यादा गया गुजरा है। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि कसाई तो किसका वध करता है? पशु वध करता है, परंतु वो तो अपनी आत्मा का हनन कर रहा है ना। हमारी आत्मा तड़प रही है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, और हमने ये मनुष्य शरीर धारण करके, जो एकमात्र साधन है कृष्ण को प्राप्त करने का, उसको धारण करके भी हम क्या कर रहे हैं? भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए पूरे जीवन को समाप्त कर देते हैं। कृष्ण प्राप्ति करने के लिए कोई उन्नति नहीं, कोई उत्साह नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई कंसंट्रेशन नहीं है कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है, उसके लिए मैंने क्या किया है अपने जीवन में, और ऐसे जीवन समाप्त हो जाएगा। तो क्या हम अपनी आत्मा के साथ आत्महानि कर रहे हैं? आत्महत्या कर रहा है ये आत्महत्या। जो कोई कोई लोग मार देते हैं अपने शरीर को जहर पीकर, और बोलते हैं इसने आत्महत्या कर दी। आत्महत्या ऐसे नहीं होती है। भगवान कहते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम खेदयन्ति आपो न शोषयति आत्मारुतः। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, वायु उसे सुखा नहीं सकती, जल उसे गला नहीं सकता। इस तरह से तुम अपनी आत्मा का हनन नहीं कर सकते। लेकिन भक्तों, यदि आत्मा को बार 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 तड़पने के लिए किसी पशु के योनि में डाल दिया जाएगा, तो एक तरह से उसकी हत्या ही हो रही है। कब तक उसे कृष्ण से दूर रखेंगे? कब तक उसे लक्ष्य को प्राप्त करने से, कृष्ण प्रेम से दूर रखेंगे? कब तक सीरियस नहीं होंगे? एटलीस्ट हमें ये सोचना है कि हम अपनी जपा के लिए सीरियस हो जाएं, माला के लिए। जितनी भी आप माला की क्वांटिटी कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो दिन शुरू होने से पहले या दिन के किसी भी समय में, जैसे ही दिन स्टार्ट हो रहा है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी जपा की क्वांटिटी को कंप्लीट करने में सबसे पहले फोकस करें। भले कितना ही बड़ा दिन है, भले कोई कहीं जाना है, कुछ करना है, कुछ भी करके अपनी माला पर, जितना हम ज्यादा सीरियस होंगे भगवान उतना ही प्रसन्न होंगे, और उतना ही जल्दी हमें, ऐसे देखो भगवान क्या कहते हैं, शनै शनै रूपरमे, आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे एक एक करके क्रम से आगे बढ़ते जाएंगे। बुद्ध्यादिति गृहीतया, विश्वास के साथ, भगवान के अंदर इतना विश्वास है कि मेरे जीवन का लक्ष्य तुम हो, और मुझे विश्वास है कि तुम मुझे, मैं तुम्हें प्राप्त करके रहूंगा। और आत्म संस्थम मनः कृत्वा, मन जो है आत्मा के अंदर स्थित हो जाना है कि मैं ये शरीर हूं ही नहीं, ये भौतिक वस्तुओं में अगर कोई चीज प्राप्त ना हुई तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आध्यात्म में उन्नति करने का कोई चांस मुझे नहीं छोड़ना है। और न किंचित अपि न चिंतयेत, किसी भी और वस्तु, भौतिक किसी भी वस्तु के लिए यदि चिंता नहीं करेंगे, तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब तक इस शरीर का अस्तित्व है तब तक मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है, किंतु उसे इंद्रिय के विषय में नहीं सोचना चाहिए। भले ही भौतिक कार्य करने हैं, लेकिन फिर भी अपने मन को ये सोचना है कि मुझे कृष्णा प्राप्ति करनी है, और उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी और आनंद का चिंतन नहीं करना है कि ये तो मुझे केवल कामेस्त ना इंद्रिय प्रीति, काम जो है वो इंद्रिय प्रीति के लिए नहीं, लाभो जीवे तयावत, सिर्फ जीने के लिए काम, खाना पीना सोना ये सब सिर्फ जीने के लिए, क्योंकि इंद्रिय की, हम शरीर में रह रहे हैं, जिस तरह गाड़ी जो है उसका लक्ष्य ये नहीं है कि गाड़ी को ही संभालता रहे, उसका लक्ष्य ये कि गाड़ी अगर सीधा चलेगी तो मुझे लक्ष्य पर जल्दी पहुंचा देगी, तो उसको पेट्रोल भी देता है, उसकी ट्यूनिंग भी करता है, उसको सेटिंग वेटिंग करवाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खाली गाड़ी को ही अपना लक्ष्य समझता बैठे, वो क्या
इसलिए कर रहा है कि उसको अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। उसी तरह से भक्त अपने शरीर की रक्षा इसलिए कर रहा है, शरीर के लिए कार्य इसलिए कर रहा है क्योंकि उस शरीर के द्वारा ही तो उसे कृष्ण प्राप्ति करनी। कल बीमार हो जाएगा तो कैसे प्रभा साधना करेगा, कैसे अपने जप कंप्लीट करेगा। तो फिर ये सोचकर उसे आगे बढ़ना है, परंतु किसी भी इंद्रिय तृप्ति की वस्तु का चिंतन नहीं करना है। और श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्ण महानामृत का अभ्यास करने से ये अवस्था सहज ही प्राप्त हो जाती है। अगर बहुत ही आसान है, क्या करना है, केवल एक गाना ही तो गाना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, प्रेम से जपेंगे और कोशिश करेंगे कि बहुत ही सीरियसनेस के साथ, संजीदगी के साथ, इंटेंसिटी के साथ, ईगरनेस के साथ और अपने जीवन का लक्ष्य मानते हुए इस महामंत्र को जपेंगे, भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे, अवश्य भगवान के प्रेम को प्राप्त करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया मेरे लिए अवश्य प्रार्थना कीजिएगा कि मैं अच्छे से अपनी साधना कर सकूं। हरे कृष्ण।